नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विकास के लिए नागरिकों की सेहत को महत्वपूर्ण बताया। राज्य सरकार प्रदेश से विलायती बबूल नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाएगी और हुलाष्टक की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में फागोत्सव की धूम। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज जयपुर में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि अब दो से ज्यादा संतान होने पर भी उम्मीदवार स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव लड़ने के योग्य माने जाएंगे। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में कुष्ठ रोग के कारण चुनाव लड़ने की अयोग्यता को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
राजस्थान सरकार ने कालांतर में कि जो योग्य व्यक्ति है, सक्षम है, जनप्रतिनिधि बनने की योग्यता रखता है, उस काम करने का मन है और मादा भी है, पर मात्र उसकी दो से अधिक संतान होने से वो अयोग्य माना जा रहा है, इस प्रावधान को ठीक किया जाए और आज इन दोनों विधेयकों को मंजूरी देते हुए पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में और उसके स्पष्टीकरण में और नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करते दो या अधिक संतान होने के बावजूद भी वो जनप्रतिनिधि अन्य योग्यताएं रखता है तो वो चाहे पंचायत राज का कोई भी इलेक्शन हो या नगर निकाय का कोई भी इलेक्शन हो, चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाएगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने अजमेर में राजस्थान आयुर्वेद योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि जोधपुर के बाद ये प्रदेश का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय होगा, जिससे शोध और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक अपराधों पर लगाम कसने के लिए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को मंजूरी दी गई है। इसका मुख्यालय जयपुर में होगा और ये पूरे राज्य में कार्य करेगा। ये निदेशालय रियल एस्टेट धोखाधड़ी, बैंक बीमा ठगी और फर्जी दस्तावेजों से जुड़ी शिकायतों की प्रभावी जांच करेगा। औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 का अनुमोदन किया गया। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि निजी निवेशकों को औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पार्क के लिए ढांचागत विकास पर 20% तक की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जयपुर के B2 बाईपास पर बनने वाले कन्वेंशन सेंटर मंडपम के संशोधित मॉडल को भी स्वीकृति दी है।
मंडपम जो एयरपोर्ट के पास टॉक रोड पे जो जमीन है B2 बाईपास पर, मंडपम बनने का निर्णय एक पहली कैबिनेट मीटिंग में हुआ था, हमने उसको बदल दिया अभी और अब हमने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको और बेहतर बनाकर उसी एरिया में हमने कर दिया 5,815 करोड़ का मंडपम बनेगा। इससे रेवेन्यू जनरेशन जो होगा वो होगा 5,825 करोड़। जो 635 करोड़ का भार राज्य सरकार पे पहले आ रहा था उसको हमने जीरो कर दिया। पूरा मंडपम बनके तैयार होगा और उसके ऊपर भी 10 करोड़ का फायदा होगा।
प्रशासनिक स्तर पर ग्राम विकास अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए वरिष्ठ ग्राम अधिकारी का नया पद सृजित किया जाएगा। साथ ही 750 ग्राम विकास अधिकारियों को नए पद पर पदोन्नति दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि स्वस्थ नागरिक देश को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि औषधीय पौधों की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है। वे आज महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेरगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेले के उद्घाटन के मौके पर बोल रही थीं। इस मौके पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि ये आरोग्य मेला आयुष के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस के सहयोग से राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 8 की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका के भीतर कथित भ्रष्टाचार के उल्लेख पर स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा कि कक्षा 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जाना अत्यंत चिंताजनक है। इस पर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि ये विषय वस्तु संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध प्रतीत होती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बार एसोसिएशन और पीठ दोनों ही इस मुद्दे से विचलित हैं। खंडपीठ ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि किसी को भी न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक में भ्रष्टाचार, लंबित मामलों और न्यायाधीशों की कमी को न्यायिक प्रणाली की चुनौतियों के रूप में दर्शाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि पूरे प्रदेश में विलायती बबूल को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। श्री दिलावर ने आज विधानसभा में विधायक लादूराम पितलिया द्वारा उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि विलायती बबूल रोजाना 30 लीटर पानी सोखता है, जिससे प्रदेश में पानी की कमी हो रही है और करीब 500 स्थानीय वनस्पतियां समाप्त होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1960 में बीज गिराए जाने के बाद चारागाह भूमि पर इसका अतिक्रमण बढ़ गया है। श्री दिलावर ने बताया कि पंचायती राज विभाग इसे हटाने की कार्ययोजना पर विचार कर रहा है। अजमेर की आनासागर झील से मलबा हटाने और डीसिल्टिंग का काम जल्द शुरू होगा। इसकी पूरी योजना बनाने के लिए संभागीय आयुक्त अजमेर सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज विधानसभा में इस बारे में विधायक चंद्रभान सिंह चौहान की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में ये बात कही। नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वहां से मलबा हटाने और डीसिल्टिंग का काम किया जाना है। इसके लिए सरकार बजट में भी प्रावधान कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए जल्दी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी सरकार को ये काम प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि सरकार उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगा रही है और किसानों को ऋण सुविधा देने के लिए जल्द ही किसान पहचान पत्र जारी करेगी। श्री सिंह ने एआई संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार के बारे में जानकारी दी।
भारत विस्तार ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है कि जिसमें किसान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसके वो कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं होता कि डाउन करो कि लोड करो, उसको सीधे वो मोबाइल पर सवाल पूछे और उसका जवाब मिल जाए। तो ये भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है। अब इसको बाकी भाषाओं में भी हम परफेक्ट करके उसमें हर तरह की जानकारी मिल जाए।
प्रदेश में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को प्रभावी रूप से लागू करने में सवाई माधोपुर जिला पहले स्थान पर रहा है। पशुपालन विभाग के अनुसार जिले में अब तक 15,800 से ज्यादा दुधारू और अन्य उपयोगी पशुओं का मुफ्त बीमा किया जा चुका है। इस पहल से 7,494 पशुपालकों को सीधे तौर पर आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिला है। होलाष्टक की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में होली की सांस्कृतिक और धार्मिक रंगत दिखाई देने लगी है। पाली जिले के रूपावस, घेनड़ी, पिलोवनी, वणदार और रूगड़ी गांवों में चंग की थाप पर पारंपरिक गेर नृत्य के आयोजन शुरू हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में लोकगीतों के बीच उत्साह का माहौल है, वहीं महिलाओं ने भी पारंपरिक लुम्बर लेना शुरू कर दिया है। उधर भरतपुर सहित पूरे ब्रज क्षेत्र में फागोत्सव की धूम है। मंदिरों में फाग के गीतों और अबीर गुलाल की महक से वातावरण उत्सवमय हो गया है। भरतपुर के खाटू श्याम मंदिर में आज से 5 दिन का फागोत्सव शुरू हुआ। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
कल शाम बाबा नगर भ्रमण पर निकलेंगे और 27 फरवरी को एकादशी पर होली की शाम सामरी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 28 फरवरी व 1 मार्च को भी विभिन्न रंगोत्सव कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे और इसी श्रृंखला में पर्यटन और जिला प्रशासन की ओर से 28 फरवरी को ब्रज होली महोत्सव के तहत विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ ही रंगोली, चित्रकला व मेहंदी साफा वादन मूज प्रतियोगिताओं के आयोजन होंगे तथा विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में कल्चर इवनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
44वीं रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता कल से पाली में शुरू होगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि प्रतियोगिता में जोधपुर रेंज की 12 टीमों के 500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें पुरुष और महिला वर्गों के लिए कबड्डी, फुटबॉल, कुश्ती और शूटिंग सहित विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित होंगी। प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम और जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, पॉक्सो एक्ट और आशा योजना के प्रावधानों की जानकारी दी गई। वहीं नागौर में जिला कलेक्टर चंपालाल जीनगर ने कलेक्ट्रेट परिसर से बाल विवाह मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों, स्कूली विद्यार्थियों और युवाओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विकास के लिए नागरिकों की सेहत को महत्वपूर्ण बताया। राज्य सरकार प्रदेश से विलायती बबूल नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। और होलाष्टक की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में फागोत्सव की धूम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।